And welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद राजेश. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आधे घंटे के इस शो में हम शेयर बाजार और अर्थ जगत की खबरों पर गौर करेंगे. आज के समाचारों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन. नमस्कार पुनीत, आपका स्वागत है.
वेलकम पुनीत.
थैंक यू राजेश.
और अब पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख.
इंडिया एंड यूके इंक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन लंदन. Prime Minister Narendra Modi terms it a blueprint for shared prosperity. Domestic benchmark indices end with losses. Sensex slips over 540 points. Nifty closes at 25,062. And Cooperation Minister Amit Shah unveils National Cooperative Policy 2025.
भारत और ब्रिटेन ने लंदन में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन की साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है. प्रमुख घरेलू सूचकांक गिरावट में रहे. सेंसेक्स 540 अंकों से अधिक के नुकसान पर हुआ बंद. निफ्टी 25,062 पर हुआ बंद. और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का किया अनावरण. और सबसे पहले आज की बड़ी खबर, भारत और ब्रिटेन ने आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर कर दिए. लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ वार्ता के बाद कहा कि आज का दिन भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता संपन्न हुआ है.
एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा. भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे. भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा. वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे.
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन की साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है.
इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है. इसे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के, उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी. कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा. साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल्ड टैलेंट मिलेगा. इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे.
श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा.
इन हिज स्टेटमेंट द यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर सेड द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट ट्रेड डील that the UK has made since leaving EU. He thanked Prime Minister Modi for his leadership and pragmatism.
This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. Today we're announcing nearly £6 billion in investment and export wins between India and the United Kingdom, creating over 2,200 jobs for British workers.
Later, Prime Minister Modi held a bilateral meeting with the UK Prime Minister Keir Starmer in London. Speaking on the occasion, he said, "Together, India and UK are laying the foundation stone of a new history." Puneet, indeed, very rightly, the Prime Minister has mentioned that they together are laying a foundation for a new history. What will this new history have going forward?
So, Rajesh, clearly, I think this is one of the most significant trade deals that India has signed in past many, many years. And I'm sure that this will reshape the entire economic landscape for India in terms of exports to the European Union, because UK is the gateway to European Union in a particular way. And we're expecting $120 billion in trade in the next 5 years, that is annual trade. So that will be significant value accretion for India and UK as well.
We'll discuss the details of this story in a while. In meantime, Prime Minister Narendra Modi is set to visit Maldives from July 25-26 in the second leg of his two-nation tour. India and Maldives share strong ties, particularly in trade and economic cooperation. Bilateral trade between the two countries has been more than $500 million in the last few years. Let's hear more from a correspondent, Jeevan Bhavsar, from Maldives capital, Mali.
India and Maldives signed a trade agreement in 1981 for the export of essential commodities. Indian exports to the Maldives include a variety of engineering and industrial products like drugs and pharmaceuticals and agriculture produce. In August 2022, facilitation of free tuna export to India from Maldives was announced. Last year, both the countries initiated discussions on the free trade agreement. Talking exclusively to Akashwani on the progress of FTA, High Commissioner of India to Maldives, G. Balasubramaniam, said,
"I am very happy to announce that the terms of reference for the negotiations of free trade agreement has been signed. Earlier this month, Commerce Secretary was here and they have agreed, and we will be soon starting the free trade agreement. So this is a significant step from the vision document that was there, which had identified FTA as one of the deliverables between the two countries."
For the last three decades, Mr. Manoj Nair is doing business in Maldives, and while talking exclusively to Akashwani, he expressed extreme happiness with the business environment in the Maldives.
"Overall, it's a very positive environment, and Maldives actually has a very long history of working very closely with India, culturally, business-wise, economically. The bilateral ties, the people-to-people ties, also very strong. You know, Maldives is a preferred destination among a lot of Indian travelers, and Maldivians also look forward to India in many ways, actually, for expert medical treatment. They also look forward to India for tourism as well as business, and quite a lot of Indian products are imported by the Maldives. I think that the volume of trade is also increasing year after year."
Jeevan Bhavsar, Akashwani News, Male, Maldives.
Puneet, both the agreements aim to facilitate market access and cost-effective trade for businesses and Indian consumers via reduced import duties on various products. And these products are quite many: cosmetics, aerospace, lamb, medical equipment, etc., etc. So it's a win-win situation, not just for the economy, for the consumers as well.
Absolutely. And if you look at the scope of the agreement, it is vast. Almost every corner of the economy is covered by these agreements, particularly the India-UK agreement, which covers everything from services exports to agricultural products, to engineering products, textiles, labor-intensive sectors. Practically every segment of the economy will stand to benefit significantly. And when we talk about $120 billion annual trade with UK in the next 4-5 years, I think UK will emerge as one of the most significant trading partners with India. If you really ask me, I think it's a major win for India, because we have this tremendous pressure coming from China, which is trying to, you know, create its own space in the international trade. They have been dominating international trade. But I think India's emergence as a significant trading partner here will be the centerpiece to this agreement.
And with a developing country, this deal is also very important. In such a time, when we are also doing trade negotiations with the US, so you think that from that point of view, this is a very बड़ी जीत?
देखिए बिल्कुल, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन है जहां पर हम मल्टीपल ट्रेडिंग पार्टनर से, बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर से, अमेरिका है, यूके है, EU से ट्रेड बातचीत चल रही है, मालदीव्स भी हमारे सिग्निफिकेंट है बिकॉज मालदीव्स में हमारा पॉलिटिकल स्टेक बहुत हाई है, तो वहां पर ट्रेड डील होना, हालांकि अमाउंट कम है लेकिन उसका जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत है हमारे लिए.
So also, carry on.
रुक करें अब बाजारों का, देखते हैं कि बाजारों में आज कैसा प्रदर्शन रहा. प्रमुख घरेलू सूचकांक आज गिरावट पर बंद हुए. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच आईटी और एफएमसीजी क्षेत्रों में बिकवाली के चलते बाजार में ये मंदी आई. बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 0.66% की गिरावट से 542 अंक कम होकर 82,184 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.63% की मंदी से 158 अंक कम होकर 25,062 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार की बात तो यहां भी गिरावट का रुख था. बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.43% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% की गिरावट दर्ज हुई.
बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्सेस एंडेड इन द रेड टुडे, ड्रैग्ड डाउन बाय सेलिंग इन आईटी एंड एफएमसीजी स्टॉक्स अमिड मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज. द 30 शेयर बीएसई सेंसेक्स स्लिप्ड 542 पॉइंट्स और 0.66% टू सेटल एट 82,184, while the NSE Nifty 50 dropped 158 points or 0.63%, ending the session at 25,062. The broader market indices of the BSE closed lower. The mid-cap index decreased 0.43% and small-cap index fell 0.5%.
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 24 कंपनियों के शेयर गिरावट में रहे. सबसे अधिक नुकसान में रहने वाली कंपनियों में शामिल थीं 3.9% से अधिक गिरावट के साथ ट्रेंट, 3.1% मंदी पर टेक महिंद्रा और रिलायंस के शेयर में लगभग 1.5% की गिरावट रही. सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में एटर्नल का शेयर 3.44% के उछाल में रहा. टाटा मोटर्स में 1.5% की तेजी दर्ज हुई और सन फार्मा 0.5% से अधिक बढ़कर बंद हुआ.
In sectoral indices of the BSE, 18 out of 21 sectors ended in the red. Among the top laggards, focused IT shed 2.22%, IT declined 1.84%, and tech dropped almost 1.5% each. Among the top gainers, healthcare rose 0.5%, metal climbed 0.10%, and auto marginally added 0.03%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,290 companies declined, shares of 1,569 companies advanced, while shares of 183 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 72 companies hit their 52-week high, while 29 hit their 52-week low.
क्या कहेंगे आप सेंसेक्स में आज कल की तेजी के बाद आज जो हमने गिरावट देखी है उसके आपको क्या कारण लगते हैं और ये जो डील की जो समाचार आया है आपको लगता है इसका हम पॉजिटिव असर कल के बाजार पर देख सकते हैं?
जरूर सोनू, पहली बात तो ये कि जो यूके के साथ डील है बहुत सिग्निफिकेंट है और ये बाजार बंद होने के बाद ये खबर बाजारों में आई तो इसका हम डेफिनेटली असर देखेंगे बाजारों में. अब मुझे लगता है वो सेक्टोरल स्पेसिफिक होगा कि जिन क्षेत्रों में हमें लगता है कि ज्यादा फायदा होगा वो शायद उसमें अच्छा पॉजिटिव मूव आएगा. मोस्टली
ऑल सेक्टर्स आर कवर्ड इन द डील.
दैट इज ट्रू. लेकिन आप देखिए जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है वहां पर
एग्रीकल्चर
वहां पर हमें काफी ज्यादा क्लियर बेनिफिट नजर आ रहा है. इंजीनियरिंग गुड्स में भी, हालांकि जैसे हमने पहले बात करी कि सभी जो सेक्टर्स हैं उसमें हम ज्यादातर वहां पर हम बेनिफिट देख रहे हैं, पर मुझे लगता है बाजार जो है वो रिएक्ट
पर्टिकुलरली कौन से सेक्टर्स हैं आपको लगता है जो देखिए
मुझे लगता है
साहित होंगे.
हाँ, जो मुझे लगता है टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स और जो लेबर से रिलेटेड. इनफैक्ट अगर आप ट्रेड डील को देखें, इसके फाइन पॉइंट्स पढ़ेंगे तो इसमें आईटी सेक्टर जो हमारे काफ़ी निर्भरता है अमेरिका पर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के लिए, मुझे लगता है कि ये और यूके और ईयू में वो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हमारी उतनी एक्सेस भी नहीं थी मार्केट की, तो एक नया चैप्टर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के लिए और आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए यहाँ खुल सकता है. तो मुझे लगता है कि मार्केट उसको शायद थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देगी. और जैसे आपने बाजार की बात कही कि आज हमने देखा बाजार में गिरावट थी, कल करीब करीब इतनी ही बढ़त थी. तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है, थोड़ा अनसर्टेन है, डायरेक्शन को ढूंढ रही है मार्केट. और क्योंकि जो अर्निंग सीजन के जो नंबर्स आ रहे हैं वो मिले जुले हैं, वो कोई बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं है, एक बहुत ही मैं कहूंगा मिला जुला रुख रहा है कंपनी के रिजल्ट्स में.
और इसी ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं रिजल्ट्स में.
हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि अचंभे की बात है कि कुछ सेक्टर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जैसे सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है, हमने देखा. इवन स्टील सेक्टर की जो कंपनी उसके शुरुआती दौर आए वो अच्छे आए हैं. और जहां हमें कुछ, और बैंकिंग में हमने अच्छा प्रदर्शन देखा. लेकिन आप देखेंगे कि जो आईटी सेक्टर है, जो कि बिल्कुल एक पिलर रहा है स्टॉक मार्केट्स का, वो तो मैनी डिकेड्स मैनी इयर्स, वहां पर हमने इस बारी देखा कि वहां पर उतने बढ़िया रिजल्ट्स नहीं आए. तो और लेकिन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत है. केमिकल सेक्टर में हमने थोड़ा देखा है कि डिसअपॉइंटमेंट रही है. तो कुल मिला जुला करके रिजल्ट है. लेकिन मार्केट आई थिंक वंस दिस अर्निंग सीजन इज बिहाइंड अस, ये आने वाले दो हफ्तों में, उसके बाद मार्केट में डायरेक्शन बेहतर होगी.
सो दिस एफटीए विल ऑफर ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस टू 99% ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स कवरिंग नियरली the entire trade value. And as you said, this is this will particularly be benefiting the labor incentive exports like textiles, footwear, gems and jewelry, furniture, auto components and engineering goods. We were paying earlier 4% to 16% duty. Now, nothing. Now, this augurs well for all the labor incentive.
Absolutely, Rajesh. I think this is a very smart move because, see, we could have had this headline trade deal and, you know, is talking about big exports. But I think to ensure that the employment opportunities in India get a boost and we are able to export services, because that is where we really excel. If you're looking at trying to beat others in manufacturing, it's going to be a tough fight. But I think services is where we have massive advantage. And I think it's really smart on part of the negotiators from India and Indian government that they have got this deal where we protect that potential, because there we have a clear edge. And I think in the days to come, you will see that not only UK, and because this will to some extent become template for the trade deal with EU, with the European Union, because if we have done it with UK, I'm sure we can to a large extent replicate it similar lines with EU. And this labor intensive sectors getting a boost for exports and getting incentives, I think it's going to be a game changer.
Do you expect something similar in the US deal also?
Very difficult to say. See, US is on a different trip, if you ask me. Honestly, I'm not able to figure out what they really want. They already have access to our markets, the technology companies. And so US does not actually manufacturing many, you know, consumer goods. They mostly manufacture very high technology items, which India in any case is importing. And financial services, we are already importing. They're many, you know, they have free access to our markets. So I don't really know what they are looking for, but I'm sure that this will put a lot of pressure on US to close the deal with India.
So, Puneet, briefly, 1 August ka jo deadline hai, wo aane wali hai, and it's next week only. So, aapko lagta hai ki ye uncertainty bani rahegi, aur is dauran hum US dwara bhi bahut sari deals dekhenge?
Haan, dekhiye, US koshish kar raha hai ki, lekin jo US ki badi deals thi, wo nahi abhi fructify hui hai. To US ke upar pressure bhi rahega. 1st अगस्त तक वो उनको उन्होंने कहा है कि जी हम तो ट्रेड जो टैरिफ्स है वो इम्पोज करेंगे. तो ये बहुत हाई प्रेशर वीक आप देखेंगे
बाजारों के लिए,
तो ना सिर्फ यूएस गवर्नमेंट के लिए, मुझे लगता है दूसरे देशों के लिए, भारत के लिए भी ये एक चैलेंज है. देखिए, हम अमेरिका से अच्छी एक संबंध चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे ट्रेड संबंध उनसे और बेहतर हों, एंड इट इज फॉर बेनिफिट ऑफ बोथ द कंट्रीज. सो क्लियरली हम चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी एक अच्छी हम उनसे ट्रेड डील कर सकें.
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर जाने से पहले करेंसी बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 1 पैसे कमजोर होकर 86.40 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में तेजी के साथ 97.41 पर था. आपकी छोटी सी टिप्पणी, 100 से काफी ऊपर पहुंच गया था डॉलर इंडेक्स, अब नीचे आ गया है, ये क्या संकेत दे रहा है?
देखिए, सोनू, डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस है ये एक बड़ी चिंता का विषय रहा है, क्योंकि हालांकि आप देखेंगे मार्केट की जो परफॉर्मेंस है अमेरिका में बहुत अच्छी रही है और जहां पर इकोनॉमिक न्यूज भी आप देखें बड़ी स्ट्रांग रही है, तो उसके बावजूद अगर डॉलर इंडेक्स में कमी आती है तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि जो निवेश आ रहा था दुनिया से, निवेश जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी अमेरिका में डॉलर एसेट्स में, वो कम हुई है काफी सिग्निफिकेंटली। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका में जो डॉलर एसेट्स थी उसको बेचा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने और उस पैसे को बाहर निकाला है, विड्रॉ किया है इन्वेस्टमेंट्स को अमेरिका से, ऐसा हमें ये कारण लगता है। और ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है अमेरिका के लिए, आई होप कि इट स्टेबिलाइजेज अराउंड दीज लेवल्स, तो एक स्टेबिलिटी का माहौल हमें जरूर चाहिए इंटरनेशनल मार्केट्स में।
आइए अब रुख करते हैं अन्य एशियाई बाजारों का। कल अमरीकी बाजारों में आई तेजी के बाद प्रमुख एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था। जापान का निकेई सूचकांक 1.6% के उछाल में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक लगभग 1% की बढ़त पर बंद हुआ। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.6% से अधिक की वृद्धि हुई। हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में 0.35% की वृद्धि दर्ज हुई और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.21% बढ़त आई। यूरोपीय क्षेत्र पर नजर डालें तो दिन के कारोबार में यहां रुख मिला जुला रहा। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी में 1% की तेजी थी। जर्मनी का डैक्स लगभग 0.6% की वृद्धि पर कारोबार कर रहा था और फ्रांस का कैक 0.08% की मामूली गिरावट पर था। तो जापान के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसका हम असर देख रहे हैं एशियाई बाजारों पर?
डेफिनेटली सुनू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जापान के साथ जो ट्रेड डील है अमेरिका की, वो भी काफी बड़ा एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग रिलेशनशिप है दोनों देशों में और इससे एक स्टेबिलिटी का माहौल जरूर आएगा।
Key US stock indices ended higher yesterday and treasury yields reversed their three-day slide after a trade deal between the United States and Japan. The Dow Jones Industrial Average rose over 1.1% to 45,010. The S&P 500 rose 0.78% to 6,359 and the Nasdaq Composite rose 0.60% to 21,020. Puneet, we're talking about trade deals here with Vietnam, Indonesia, Philippines, Japan. All appear to be in the broad range of 15% to 20%, much lesser than the tariffs threatened by Trump on April 2, but still above the baseline of 10% tariff that is currently in place. Do you think that we now live a new normal where 10% is the new zero? And so 15 and 20% doesn't seem so bad after all.
So, Rajesh, clearly America is defining this phase of the trade deals. We will only know the impact of all these tariffs on the US consumer later. Because after, I think, few months, then the inflation scenario will play out as a result of these tariffs. If you look at all these trade deals, the big ones, the big win for America really is the trade deal with Japan. If you look at what happened with Canada, with Mexico, with major other South Korea, no, the major trading partners, I don't think those deals really went through very smoothly and there's still a lot of tariffs involved there. So I would say in America, the trade scenario is still work in progress. It is something which is not going to be finalized in next 1 week. I think it will kind of stabilize in the next 6 months when all these Canada, Mexico deals with UK, with UK, of course, they have a deal, but with European Union, all those things will settle.
So our UK FTA, will that have any rub off on our discussions with the US authorities?
Definitely, because see, first of all, India has now got one big trading partner, so we have an alternative because we were so dependent on exports to US, and we have a very large in merchandise exports, we have a large trade surplus with the US, which was always a kind of a pressure point for us, because if something goes wrong in US exports, it puts pressure on Indian economy. So clearly the deal with UK and the deal in progress with EU, I think will release a lot of pressure on us, so we will be able to deal with the US in a much better, I would say, frame of mind. So definitely it will rub off on the US trade talks also.
So bone of contention is the UK and dairy products. So how do you think we will go through it, because the team is coming from US now to India?
So Rajesh, clearly it's a very sensitive matter because where farmers are involved and, no, and particularly in India, the farmers, the incomes are small, relatively smaller. In US, you have very large farmers, you have corporations which are dealing with farm products. In India, it's so much human angle is there. So it's these deals, and India was very firm in this, saying that whatever happens, we will not compromise the safety, security and welfare of farmers. And I think rightly so, and it's a very tough and good stance to take. So I think post the developing scenario, US will appreciate India's position.
और US markets में S&P नए records छू रही है, तो आपको लगता है कि अभी तक तो कोई negative असर ऐसा as such नहीं दिखाई दिया है, हमारे भी inflation control में है, so अब जो meetings होने वाली हैं RBI की और US Fed की, आपको लगता है कि rate cuts हो सकते हैं?
Definitely, अब जो situation सामने आ रही है, देखिए सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका में जो record स्तर पर इंडेक्स चल रहा है, उसका मुख्य कारण है कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, मैग्निफिसेंट सेवन की हम बात करते हैं, एनवीडिया की बात करते हैं, तो ये सब कंपनीज जो हैं ये एक रिकॉर्ड स्तर पर चल रही हैं, तो वहाँ पर कुछ हद तक एक डाइकोटमी है कि बड़ी कंपनीज का प्रदर्शन बहुत अच्छा है लेकिन छोटी कंपनियों का प्रदर्शन में थोड़ा स्ट्रेस है. पर मुझे लगता है कि जो भी इकोनॉमिक सिनेरियो है इसमें इंटरेस्ट रेट के नीचे आने की संभावना काफ़ी अच्छी है.
चलते हैं अगली खबर की ओर. सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया. इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में यह नीति अहम भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर रोड मैप बनाकर इस नीति को सहकारिता द्वारा समृद्धि का सपना पूरा करने का उद्देश्य पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 में जारी की गई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. सो ये कोऑपरेटिव मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है डेवलपमेंट का भारत जैसे देश के लिए.
बिल्कुल सुनो, देखिए ये हम इसको कुछ हद तक मैं कहूंगा नजरअंदाज करते हैं जो ग्राउंड लेवल पर जो इसका वैल्यू एडिशन है कोऑपरेशन से, क्योंकि वहां पर आप उसको काफी अच्छा आगे बढ़ावा दे सकते हैं. मुझे लगता है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक एरिया है और इसको सरकार जिस अहमियत दे रही है भी बहुत एक वेलकम स्टेप है.
Moving on, international crude oil prices rose today, buoyed by optimism over U.S. trade negotiations that would ease pressure on the global economy and a sharper-than-expected decline in U.S. crude inventories. Brent crude was trading 0.5% up at $68.83, while WTI crude was 0.60% higher at $65.64 per barrel when reports last came in. So, quick comment on $68 and 60 and 83 cents rate that we are getting on the oil now because of the trade negotiations. We are forgetting that there are geopolitical tensions as well still going
so,
on.
So, Rajesh, fortunately, oil has not been a point for stress for Indian economy because we apprehended that it will become a big problem when there were all the tensions in the Middle East. Fortunately, oil has remained in a very narrow range, $65 to $70, very comfortable for Indian economy. And I think it's really a kind of a bright spot for Indian businesses that these prices are very stable.
In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 0.9% down at 99,010 rupees per 10 grams, and silver was also trading 0.5% down at 1,15,360 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.8% से अधिक गिरावट के साथ 98,588 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 0.4% से अधिक की गिरावट से 1,15,132 रुपए प्रति किलो पर थी. हालांकि आज गिरावट आई है लेकिन चांदी के जो ये लेवल्स पहुंचे हैं इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं?
देखिए चांदी इस वक्त अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीब $39 पर औंस इसका ट्रेड चल रहा है और ये काफी नीचे है अभी भी एक टेक्निकल उस लेवल के. मुझे लगता है अभी चांदी में और चमक आ सकती है. सोने में अब स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं आ रही है.
समय समाप्त हो रहा है सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत आने के लिए और मार्केट मंत्र के श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए.
धन्यवाद सोनू.
थैंक यू पुनीत फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, इंडिया एंड यूके इंक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन लंदन. Prime Minister Narendra Modi terms it a blueprint for shared prosperity. Domestic benchmark indices end with losses. Sensex slips over 540 points. Nifty closes at 25,062. And Cooperation Minister Amit Shah unveils National Cooperative Policy 2025. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.